मित्रों नमस्कार। रेडियो मधुबन में हम फिर से पठामी संस्कृतम के पाठ को पढ़ेंगे। तुम मेरे साथ अभी पढ़ रहे हो शिवमहिम्न स्तोत्र। ये एक बहुत सुंदर छोटा सा स्तोत्र है जिसमें भाव लालित्य और भाषा लालित्य, छंदों का सौंदर्य अत्यधिक है। थोड़ा सा समझने में कठिन है लेकिन इसका आनंद हम ले सकते हैं। तो इसे पढ़ते हुए हम आज और अगले कुछ रविवार चलेंगे। आज हम दूसरे श्लोक से आरंभ करते हैं क्योंकि पहला श्लोक हम पढ़ चुके हैं। कवि कहता है, अतीत पंथानम तव च महिमा वांग मनसयोर तद्व्यावृत्यायम चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविध गुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। तव च महिमा अर्थात तुम्हारी महिमा, अतीत पंथानम वांग मनसयो अर्थात वांग मनसयो हो पंथानम अतीतः अर्थात वाचा, वांग और मन, इन दोनों के सोच से परे, इन दोनों की पहुंच से परे, इन दोनों के रास्ते से परे है, अतीत है अर्थात उनसे पार पाने वाली नहीं है। अतद व्यावृत्या यम अर्थात जिस तुम्हारी महिमा को श्रुति ही अपि अर्थात वेद भी किस प्रकार वर्णन करते हैं, तो अतद व्यावृत्या अर्थात यह कह करके कि तुम यह नहीं हो, यह नहीं हो, यह नहीं हो, यह भी नहीं हो, नेति नेति न इति न इति न इति, क्योंकि तुम क्या हो ये वो नहीं बता पाते हैं, तो केवल ये बताते हैं कि तुम क्या नहीं हो। और क्या नहीं हो मतलब कौन सी ऐसी मर्यादित वस्तुएं हैं जो तुम नहीं हो, क्योंकि तुम मर्यादाओं से परे हो। और चकितम और तुम्हारा वर्णन करते हुए वेद भी चकित अर्थात विस्मय में डूबे रहते हैं क्योंकि उन्हें भी पता नहीं चलता कि तुम कौन हो और तुम्हारी महिमा कितनी अपार है। और अभिधत्ते अर्थात तुम्हारा वर्णन करते हैं चकितम अर्थात विस्मय में डूब करके। और वेद तुम्हारे वर्णन के लिए क्या कहते हैं कि सकस्य स्तोतव्यः, कि तुम्हारी महिमा का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है, कति विध गुणः तुम्हारे किन किन गुणों का वर्णन किया जा सकता है, कस्य विषयः तुम्हारे किस विषय में बात की जा सकती है। इन सबों के विषय में वेद भी अनभिज्ञ है, तो मेरे लिए क्या बचता है। पदे त्वर्वाचीने तुम्हारे जो चरण है वो अर्वाचीन यानी समीप, सहसा अर्वाचीन शब्द का प्रयोग काल के सापेक्ष किया जाता है, प्राचीन और अर्वाचीन, लेकिन यहाँ कवि ने उसे समीपता के भाव से व्यक्त किया है कि तुम्हारे जो चरण हैं वो मेरे समीप हैं, तुम्हारी महिमा बहुत दूर है, बहुत अपार है, तो चूंकि तुम्हारे चरण समीप हैं तो किसका पतति न मनः कस्य, किसका मन उन्हीं में नहीं डूबेगा, और पतति न कस्य वचः और किसकी वाणी भी तुम्हारे चरणों में ही नहीं डूबेगी, तुम्हारे चरणों को ही देख करके मन और वाणी संतुष्ट हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, केवल उन्हीं का बखान करेंगे, तुम्हारी महिमा को मैं छूने का प्रयास भी नहीं करूंगा, छूने को सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि स्वयं वेद भी तुम्हारी महिमा के विषय में नेति नेति कह करके ही तुम्हारा वर्णन करते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, मधुष्फीता वाचः परमम अमृतम निर्मितवतस्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मय पदम ममत्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदय रक्षा प्रलय कृत् त्रयी वस्तु व्यस्तम तिसृषु गुण भिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयाम रमणीं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः। मधुस्फीता वाचः अर्थात मधु के समान मीठेपन से भरपूर, स्फीता अर्थात जो एक ऊंचाई को छू रहा हो, तो मधु की ऊंचाई को छूने वाला या मधु को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने वाला, इतना मीठा। और मधुस्फीता वाचः, यहाँ वाचः शब्द वेदों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, परमम अमृतम, जो कि अमृत के समान हैं और परम रस से भरे हुए हैं, ऐसे वेदों का निर्मितवतः तुमने निर्माण किया हुआ है, या वे तुम्हारे द्वारा निर्माण किए गए हैं। तो फिर हे ब्रह्मन्, क्या सुरगुरु अर्थात बृहस्पति, जो बहुत ही बुद्धिमान है, लेकिन क्या स्वयं उनकी भी स्तुति तुम्हारे लिए विस्मय की बात है? अर्थात उनकी स्तुति से भी तुम प्रभावित नहीं हो सकते, क्योंकि तुम स्वयं ही वेदों के रचयिता हो। वेदों में जो परम अमृत है उसके तुम रचयिता हो, वह तुम्हारे द्वारा निर्मित है। बृहस्पति के बुद्धि से भरे हुए वचन तुम्हारे लिए विस्मयकारी या अबूझ नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे तुमको यदि मैं कुछ स्तुति पर कहूँ तो उसकी महत्ता ही क्या है, या उसका बड़प्पन क्या है? लेकिन यह स्तोत्र मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम्हारे गुण कथन के पुण्य से मेरी वाणी पुनीत हो सके। तो कितना सुंदर अर्थ यहाँ भरा है, तुम्हारे निर्माण की इतनी बड़ी महिमा है, और मैं अपनी वाणी से तुम्हारा गुण कथन करना चाह रहा हूँ। तो हे पुरमथन, पुरमथन यह फिर से संबोधन है शिव जी के लिए, क्योंकि उन्होंने त्रिपुरों का मथन अर्थात ध्वंस किया था, इसलिए उनका नाम पड़ा था त्रिपुरारी। तो हे पुरों का ध्वंस करने वाले शिव जी, मैं जो तुम्हारे गुणों का वर्णन करने यहाँ बैठा हूँ, तो मेरी वाणी कोई बृहस्पति की वाणी से या तुम्हारी खुद की बनाए हुए वेदों से अधिक महिमा मंडित नहीं हो सकती, लेकिन उसमें मुझे पुण्य जरूर है। तो यह मेरी जो वाणी है एताम वाणीम, यह तुम्हारे गुणों का कथन करके इसे पुण्य ही मिलने वाला है। और पुनामि इत्यर्थेस्मिन् बुद्धिर्व्यवसिता, मेरी बुद्धि जो है उसका उपयोग करके मैं यह स्तोत्र रचने के लिए बैठा हूँ, ताकि तुम्हारे गुण कथन से मेरी वाणी विशुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, पुनामी अर्थात पुनीत हो जाए। इस विचार से मैं यह स्तोत्र रचने के लिए बैठा हूँ। तो यहाँ पर कवि ने फिर से खुद शिवजी के द्वारा बनाए गए वेदों की मधुरता और बृहस्पति के वचनों की बुद्धिमत्ता दोनों के सामने अपने को छोटा बताते हुए भी यह साहस किया है कि वह शिव के गुणों का कथन करने का काम करे, इसके लिए कोई स्तोत्र रचना करे, ताकि उसकी स्वयं की बुद्धि पुनीत हो जाए। और अगला श्लोक यह कहता है, तवैश्वर्यम यत, जो तुम्हारा ऐश्वर्य है वो किस प्रकार का है? कि तवैश्वर्यम यत तत् जगदुदय रक्षा प्रलय कृत, तुम्हारा ऐश्वर्य ऐसा है जो जग का उदय, रक्षा या रक्षण और प्रलय अर्थात विलय करने वाला, ऐसा तुम्हारा ऐश्वर्य है। और त्रयी वस्तु अर्थात जो वेद त्रयी है, ऋक साम और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को मिला करके वेद त्रयी कहा जाता है। तो ऐसी वेद त्रयी का तुम विषय वस्तु हो, त्रयी वस्तु उनके वर्णन का मुख्य विषय तुम हो। और तुमने ही क्या किया है कि पूरे संसार को तीन प्रकार के गुणों में, तीन विभिन्न गुणों में तुमने संसार को बांटा है। वह तीन गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस प्रकार व्यस्तम अर्थात तुमने उनका विभाजन किया है। इन तीनों गुणों के आधार से सृष्टि अपने कार्यकलाप करती है, ऐसी तुम्हारी महत्ता या ऐश्वर्य है। और आगे कहते हैं, अभव्यानाम अस्मिन् वरद रमणीयाम अरमणीम। तो यहाँ वरद ये संबोधन है शिव जी के लिए, वर देने वाले वरद। तो हे शिव जी, इस प्रकार इन तीन गुणों की उत्पत्ति और इन तीन गुणों के माध्यम से सृष्टि का चलना, ये भी तुम्हारे ऐश्वर्य की ही पहचान है। लेकिन तुम्हारे इस ऐश्वर्य की निंदा करने वाले या इस ऐश्वर्य की महत्ता को नकारने वाले भी कुछ लोग हैं। तो ऐसे जो मूर्ख लोग हैं, उनकी कही हुई बातों को कुछ अन्य जो मूर्ख लोग हैं, जो अभव्य हैं, मूर्ख हैं, वे पसंद करते हैं। अन्य मूर्ख लोगों को ये बातें अच्छी लगती हैं, रमणीयाम यह निंदा तुम्हारी अच्छी लगती है, किंतु जो साधु पुरुष हैं, सही जानकारी रखने वाले हैं, उन्हें वह अरमणीम, उन्हें वह पसंद नहीं आती, उन्हें वह अच्छी नहीं लगती वे बातें। और ऐसी बातें जो लोग करते हैं उनके लिए चौथी पंक्ति में क्या कहा गया है? विहंतुम व्याक्रोशिम विदधत इहैके जड़धियः। जड़धिय अर्थात जिनकी बुद्धि जड़ हो गई है, जिनकी मति मंद हो गई है। तो ऐसे लोग तुम्हारे ऐश्वर्य को नकारते हैं, या तुम्हारे ऐश्वर्य को वो समझते नहीं हैं, या उसकी निंदा करते हैं, और तुम्हारे ऐश्वर्य की बातों का वो खंडन करना चाहते हैं, नाश करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की बातें साधु पुरुषों को पसंद नहीं आती, किंतु जो दूसरे अज्ञानी या मूर्ख लोग हैं उन्हें वे बातें पसंद आती हैं। तो यहाँ पर कवि ने संकेत उन लोगों की तरफ किया है जो ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है और इस सृष्टि को बनाने में ईश्वर का कोई हाथ नहीं है, ऐसा जो भी मानते हों उनके प्रति यह जड़धीय यह संबोधन कवि ने प्रयोग में लाया है। और मित्रों, इसके साथ ही हम अपना आज का पठामी संस्कृतम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे, अगले श्लोकों को पढ़ेंगे। तब तक तुम अपनी संस्कृत की पढ़ाई को सुधारते रहो, सुनते रहो पठामी संस्कृतम, सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।